नमस्कार, आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड का स्पेशल पॉडकास्ट।
पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर चल रहे तनाव को दूर करने के लिए कई दौर की बातचीत के नाकाम होने के बाद भारत और चीन सीमावर्ती इलाकों में अपनी सैन्य ताकत लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर अपनी तैयारी बढ़ाते हुए बोफोर्स तोप की तैनाती की है। दुश्मन के इलाकों पर सटीक निशाना साधने वाले अत्याधुनिक मल्टी रॉकेट लॉन्चर भी तैयार हैं। किस तरह की तैयारियां की गई हैं और तैनाती बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी, ये जानने के लिए बात करते हैं पूनम पांडे से, जो नवभारत टाइम्स की विशेष संवाददाता हैं और रक्षा मामले कवर करती हैं। पूनम, आप खुद एलएसी पर इन तमाम तैयारियों को देखकर लौटी हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या चल रहा है वहां।
जी, अगर हम ईस्टर्न सेक्टर की बात करें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, तो भारतीय सेना की पूरी तैयारी है। हमने एलएसी पर जाकर देखा कि किस तरीके के सैन्य साजो सामान वहां पर है, किस तरीके की भारतीय सेना की तैयारी है। तो अगर हम सारी चीजों को देख के हम एक चीज साफ कह सकते हैं कि भारतीय सेना की सिर्फ डिफेंसिव ही नहीं बल्कि ऑफेंसिव तैयारी भी पूरी है, यानी कि सिर्फ रक्षात्मक ही नहीं बल्कि आक्रामक तैयारी भी पूरी है। जिस तरीके के सैन्य साजो सामान वहां पर हैं, हमने वहां देखा कि M777 हॉविट्ज़र गन तैनात हैं, बोफोर्स वहां पहले से तैनात हैं, उसके अलावा मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पिनाका स्मर्च वहां तैनात है, जो एलएसी से थोड़ा दूर जिसको हम डेप्थ एरिया कहते हैं वहां तैनात है, क्योंकि इनकी रेंज बहुत ज्यादा होती है। जैसे अगर हम पिनाका की बात करें तो इसकी रेंज करीब 38 किलोमीटर है और स्मर्च मल्टी रॉकेट सिस्टम की रेंज 90 किलोमीटर है। तो ये इस तरीके के रॉकेट लॉन्चर सिस्टम हैं जिनसे एक बार में पिनाका से 72 रॉकेट और स्मर्ज से 48 रॉकेट एक वक्त में, एक मिनट से भी कम वक्त में लॉन्च किए जा सकते हैं और ये दुश्मन के इलाके में अंदर जाकर सटीक निशाना लगा सकते हैं। तो भारत की सिर्फ डिफेंसिव ही नहीं, ऑफेंसिव तैयारी भी पूरी है।
यहाँ एविएशन ब्रिगेड को भी अपग्रेड किया गया है, इसके बारे में कुछ बताएं कि इसमें क्या नया है।
एविएशन की वहाँ पूरी तैयारी है। हम वहाँ मिसामारी बेस में गए थे, जो आर्मी एविएशन का मिसामारी बेस है, वहाँ हमने देखा कि वहाँ ड्रोन तैनात हैं, हेरोन ड्रोन तैनात हैं सर्विलांस के लिए, पूरी निगरानी रखने के लिए, और लगातार उनकी सॉर्टी बढ़ी है, वो लगातार उड़ान भर रहे हैं 24/7। चीन के सिर्फ एलएसी पर ही नहीं बल्कि इनडेप्थ एरिया में भी लगातार भारत की निगरानी है कि वहाँ क्या हरकत हो रही है, किस तरीके के सैन्य हलचल है, क्या सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, इस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। हमने वहाँ देखा कि जो एयर डिफेंस गन है L70, हालांकि ये बहुत पुरानी गन है, 60 के दशक की है, लेकिन इसको अपग्रेड किया गया है और अपग्रेड इस तरीके से किया गया है कि एक तरीके से ये ड्रोन किलर बन गई है, यानी कि ये लो फ्लाइंग ड्रोन को भी निशाना बना सकती है और अटैक हेलीकॉप्टर को भी। तो हर चीज पर भारत की तैयारी पूरी है। हम एलएसी के बिल्कुल पास गए, हमने देखा कि वहाँ चीनी हट, जिनको हम बीपीएम हट कहते हैं, जब भी मीटिंग होती है भारत और चीन के बीच इन्हीं बीपीएम हट में, यानी बॉर्डर पर्सनल मीटिंग हट में होती है, जो एलएसी के एक तरफ भारत में हट है वो भारत की हट होती है, एलएसी के दूसरी तरफ चीन की हट है। हम वहाँ उन इलाकों में भी गए जो इंटीग्रेटेड डिफेंस लोकेशन है, भारत की तैयारी कैसी है, वहाँ सैनिक किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, हर रोज का उनका रूटीन क्या है, कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो सब हमने देखा। उसके अलावा वहाँ पे इंटीग्रेटेड बैटल लड़ने की तैयारी है। आपको ध्यान होगा कि भारतीय सेना भी IBG बनाने की प्रक्रिया में है, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, जो भारतीय सेना को ज्यादा मारक बनाएंगे, क्योंकि इनमें सारे जो भी आर्म्स हैं भारतीय सेना के वो एक साथ होंगे, चाहे पैदल सैनिक हैं, चाहे आर्टिलरी है, चाहे गन है, चाहे एविएशन है। ये छोटे इंटीग्रेटेड डिफेंडेड लोकेशन है, वहाँ वो एक तरीके से IBG का ही रूप है, वहाँ सभी एक साथ हैं और इसलिए भारतीय सेना को ज्यादा घातक बनाते हैं।
एलएसी पर इतनी तैयारियों की जरूरत क्यों पड़ रही है? चीनी घुसपैठ की खबरें तो बीच बीच में आती रहती हैं, ये भी खबर है कि चीन ने भी अपनी सैन्य क्षमता एलएसी के पास काफी बढ़ाई है इन दिनों।
जी, अगर आप पिछले साल देखें तो चीन ने जिस तरीके से दगाबाजी की थी ईस्टर्न लद्दाख में, चीन ने जो हरकत की थी उसके बाद लगातार वहाँ तनाव बना हुआ है, बातचीत से तनाव का हल निकालने के लिए लगातार कोर कमांडर स्तर की मीटिंग भी हो रही है, लेकिन अभी जो लास्ट में 13वें स्तर की मीटिंग हुई थी कोर कमांडर स्तर की, उसमें चीन का फिर से अड़ियल रुख देखने को मिला। हालांकि उससे पहले से ही दोनों तरफ से तैयारी पूरी है, भारत कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता है, इसलिए सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख में ही नहीं बल्कि पूरे एलएसी में तैयारी है और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जा रहा है, सैनिकों की पूरी तैनाती है, पूरा सैन्य साजो सामान तैयार है कि अगर चीन कोई भी हरकत करता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके।
बातचीत के जो तमाम दौर नाकाम होते जा रहे हैं, कहां पर बात आकर अटक रही है?
अगर हम 13वें दौर की जो मीटिंग हुई थी कोर कमांडर स्तर की उसकी बात करें, तो चीन की तरफ से ये कहा गया कि भारत ऐसे प्रपोजल ला रहा है जो उसको स्वीकार नहीं है, लेकिन भारत का ये कहना है कि चीन का अड़ियल रवैया है, क्योंकि भारत का स्टैंड साफ है, चीन ने वहां हरकत की थी, तो चीन को वो चीजें सुलझानी होगी। जिन एरिया में वो आगे आए हैं चीन को पीछे जाना होगा। पेंगोंग इलाके में बातचीत हो चुकी थी जिसके बाद वहां डिसएंगेजमेंट भी हुआ था, लेकिन हॉट स्प्रिंग एरिया में अभी भी दोनों तरफ के सैनिक भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने हैं, हालांकि काफी कम संख्या में, एक पलटन के बराबर, हालांकि 35-40 की संख्या में है। टेपांग और डिमचौक का एरिया है, वहां पे चीनी सेना ने भारतीय सेना की पेट्रोलिंग को बाधित किया हुआ है, तो भारत चाहता है कि एलएसी पर पुरानी वाली स्थिति हो और चीन ने जो ब्लॉक किया है वो वापस जाए। हालांकि चीन अभी इसके लिए तैयार नहीं दिख रहा है, चीन के जिस तरीके के बयान आ रहे हैं वो एकदम अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं।
जी, वो अपने अड़ियल रवैये पर भी लगा हुआ है, और अगर हथियारों की तैनाती के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, इस पर वो कई साल से लगातार आक्रामक तरीके से काम कर रहा है। क्या यहाँ कोई नए निर्माण भी किए हैं इस बीच उसने, और इसका जवाब देने के लिए हमारी तरफ से किस तरह की तैयारी है?
जी, ईस्टर्न सेक्टर में अगर हम चीन की तरफ देखें तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही अच्छा है, एलएसी तक उनकी बहुत अच्छी सड़कें हैं, और भारत की तरफ से भी इस पर काफी काम हुआ है। हम 2 साल पहले भी इसी इलाके में गए थे, ईस्टर्न लद्दाख के एलएसी पे बुमला इलाके में, उस समय सड़कों पर काम चल रहा था, अभी हमने देखा कि वो सारा काम पूरा हो गया है, क्योंकि तवांग से आगे ये रास्ता जाता है जो बुमला तक एलएसी तक जा रहा है, और तवांग तक पहुंचने का अभी सिर्फ एक ही रास्ता है जिसको हम सेंट्रल एक्सेस कहते हैं, और उसमें भी वो तेला दर्रे से होते हुए गुजरता है, तो वहां मौसम इतना खराब रहता है कि कई महीने वो रोड बाधित रहती है, क्योंकि बर्फबारी होती है, बारिश होती है, लैंडस्लाइड होता है, लेकिन अब इसका तोड़ निकाला गया है, वहां सेला टनल बनाई जा रही है जिसपे काफी काम हो चुका है, उसका पूरा होने की जो डेडलाइन थी वो अगस्त अगले साल की है, लेकिन उसे जून तक पूरा कर लिया जाएगा, और जब ये टनल बनकर तैयार हो जाएगी तो पूरा एक्सेस है तवांग तक पहुंचने का, वो साल भर खुला रहेगा चाहे बर्फबारी हो चाहे मौसम खराब हो। और इसके अलावा ये सेंट्रल एक्सेस के अलावा एक और रास्ता बनाया जा रहा है जिसको हम वेस्टर्न एक्सेस कहते हैं, तो इस अगर वेस्टर्न एक्सेस जब पूरा हो जाएगा जिसमें 2 साल का करीब वक्त लगेगा, तो तवांग तक पहुंचने के 2 सड़कें हो जाएंगी, 2 रास्ते हो जाएंगे, जिससे कभी भी वो वहां मूवमेंट बाधित नहीं होगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगातार सुधार हो रहा है। अगर हम फॉरवर्ड एरिया में देखें तो हमारी वहां सीनियर ऑफिसर्स से बात हुई है आर्मी के, जिन्होंने कहा कि फॉरवर्ड एरिया तक सड़कें बनाने का काम हो रहा है, तो कुछ सालों में भारत की स्थिति वहां और बेहतर होगी।
आप ऐसे समय में वहां से लौटी हैं जब सर्दियों की शुरुआत हो रही है, लेकिन जब पीक सर्दी होगी तो किस तरह का मौसम रहता है इस इलाके में? क्या जैसा लद्दाख में हमने देखा था वहां बहुत ज्यादा बर्फ हो जाती है, क्या इन इलाकों में अरुणाचल का जो एलएसी यहां पर भी वैसा ही हाल हो जाता है, और इसको लेकर किसी तरह की कोई तैयारी?
जी, वहाँ का मौसम बेहद खराब रहता है। अभी हम इस मौसम में जब हमने विजिट किया, हम बुमला में थे, उस समय भी लगातार बारिश हो रही थी, फॉग इतना था कि अब 50 मीटर आगे तक भी कुछ नहीं दिख रहा था। उसके अलावा वहाँ वो क्योंकि 15,000 फीट की ऊंचाई पर है, इतने करीब 3 डिग्री सेल्सियस उस समय वहाँ का टेम्परेचर था, और लगातार वहाँ लैंडस्लाइड होता है, तो ये तो एक चुनौती वहाँ है ही। और हमने बात की जो बर्फबारी होती है पीक सर्दियों का टाइम होता है, तो पूरी सड़कें में कई मीटर ऊंचा तक बर्फ जम जाती है, गाड़ियां एक तरीके से उनमें ढक जाती हैं, गाड़ियां भी नजर नहीं आती, तो ये वहां की चुनौती है, लेकिन भारतीय सेना इस चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। हमने देखा भारतीय सैनिक किस तरीके की वहां तैयारी कर रहे हैं, उनका डेली रूटीन क्या है, वो किस तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हैं ताकि हर मौसम में खुद को फिट रख सके।
जी बिल्कुल, चीन तो लगातार उकसाने की कोशिश करेगा, लेकिन उम्मीद करते हैं कि हालात वहां पर सामान्य रहें, कोई ऐसी स्थिति ना आए कि इनके इन हथियारों के इस्तेमाल की जरूरत पड़े। पूनम, इस एनालिसिस के लिए और इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।